शांति। अभी आज अनुभव सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, तो अनुभव की लेन देन हम सब करेंगे। वैसे तो हमारे सभी संत महंत बहुत अनुभवी मूर्त हैं, बहुत अनुभव है जीवन के अंदर, और अनुभव अपना शेयर भी करते रहते हैं, औरों को अनुभव बताते भी रहते हैं। परंतु आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में चार दिन से आप सब इस अरावली पर्वत की गोद में प्रकृति के पवित्र सानिध्य में शांत वातावरण में इस शांति के पवित्रता के खुशी के माहौल में आप सब लगभग 3-4 दिन से यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, यहाँ का आनंद ले रहे हैं, परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। उस अनुभव के अंदर हमारा जो बहुत अच्छा विषय है आध्यात्म के द्वारा मानव जीवन का उत्थान, और आध्यात्म से मानव जीवन का उत्थान कैसे होता है उसका 3 दिन से हम सारी चर्चा सुन रहे हैं, समा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इस प्रांगण में प्रवेश होते ही आप सबको परम शांति का अनुभव हुआ होगा, और परम पिता परमात्मा से जो शांति का, प्रेम का, खुशी का सागर है उसकी शक्तियों की छटा या बिखरती हुई नजर आ रही है। तो अनुभव सत्र की बात है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था जितनी पुरानी संस्था है, हम भी जब इस ज्ञान में आए, ब्रह्मा कुमारी जीवन में जुड़े, तो बहुत अल्प आयु में हमें ये परमात्मा का संदेश मिला, और संदेश मिलने के बाद जब ये भी ज्ञान नहीं था कि भगवान भी कौन होता है, भक्ति में भी कोई ऐसी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन जब ज्ञान मिला थोड़े से बड़े हुए समझ आए, तो स्नेह कहो, रूहानी स्नेह कहो, ईश्वरीय स्नेह कहो, वो कैसे खींच कर ले आता है अपने बच्चों को। तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं अर्थ क्लास में पढ़ती थी और हमारे कस्बे में पाठशाला खुली थी, तो एक कार्यक्रम था और जहाँ बहन जी के पास रात को सोने का प्रोग्राम मेरा था, और मुझे कोई भी ज्ञान समझ नहीं थी, तो मुझे कहा गया कि आप वहाँ ही दीदी के पास रहना शाम को, दिन में स्कूल जाना और वहीं पर होमवर्क आदि करना। ये सन 1977 की बात है, तो हमको तो कोई नॉलेज, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा कुछ ऐसे नहीं था। तो नुमा शाम का टाइम था जब कहा जाता है कि फरिश्ते संसार में विचरण करते हैं, और हम अपनी स्कूली विद्या के हिसाब से अपना अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। शाम को 6:30 बजे का समय था, और पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत जोर से, उस समय इतनी कुर्सी टेबल नहीं हुआ करती थी, चारपाई पर बैठे बैठे मुझे बहुत जोर से नींद आई जैसे, और वहीं पर किताब छोड़ के लेट गई। और लेटने पर ही मैं क्या देखती हूँ, कोई बूढ़ा बुजुर्ग सफेद कपड़े में आया है और मुझे कह रहा है, बच्ची मैं अंतिम समय पर आया हूँ, तुम भूल मत जाना। वो 2 सेकंड की बात, और मैं तुरंत उठ के खड़ी हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कौन आया, कुछ डर सा भी लगा, कुछ आश्चर्य लगा कि कौन आया, क्या कह गया। तो पास के कमरे में जो बहन जी थी वो क्लास करा रही थी, मुरली सुने लोग आए हुए थे शाम के टाइम, तो मैंने उनके पास जाके कहा कि आपने कुछ कहा, मैंने बोला नहीं, तो बोला तुमको ना भगवान ने अनुभव कराया है। उसके बाद ही मेरे जीवन की लाइफ का परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो मैं आप आगे बताती हूँ, उसके साथ साथ पहले आज अनुभव सत्र है, इसलिए अनुभव सत्र के अंदर आज हमारे मुख्य मेहमान मेहमान तो नहीं कहूंगी, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, अनुभवी भाई हैं, हम आपकी छोटी बहन हैं। और आपने जो अनुभव किया है वो अनुभव इसी मंच से नहीं, परंतु आप जहां भी जाएं, जिस भी व्यास गद्दी पर जाएं और वहां पर भी अनुभव आप शेयर करेंगे, तो सारे समाज के अंदर ये अनुभव की श्रृंखला बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें भारत के अंदर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को ला सकेंगे। इसी के लिए साथ में आज के इस अनुभव सत्र के अंदर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बीच माननीय अतिथि श्री स्वामी महामंडलेश्वर सुरेंद्र शर्मा जी महाराज, जो बुलंदशहर से हमारे बीच में पधारे हैं। आपने 3 दिन में बहुत अनुभव किए हैं, वो अनुभव हम सब के साथ साझा करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ, स्वामी जी आए और आके अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। हम सब करतल दूर स्वागत करते रहेंगे स्वामी जी का। अगली श्रृंखला में इसके पश्चात हमारे मानस उपासक श्री राम कृपाल दास जी महाराज वृंदावन से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी यहाँ 3 दिन से अनुभव कर रहे हैं और अनुभव की लेन देन में मैं आपको निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज, पीठाधीश्वर पीताम्बर विद्यापीठ मोदी नगर से हमारे बीच में हैं और आप भी आइए और आप अपना मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामी जी का हम स्वागत करते हैं, ऊपर आइएगा। हमारे बीच में स्वामी राम गोस्वामी सहारनपुर से पधारे हुए हैं और स्वामी जी सहारनपुर से आए हैं और स्वामी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप स्टेज पर आएं और आप अपना स्थान ग्रहण करें स्वामी जी। इसके साथ साथ हमारे बीच में स्वामी महेंद्र जी महाराज जो कटनी से हमारे बीच पधारे हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। साथ साथ स्वामी दिव्य आत्मानंद जी महाराज जो फरीदाबाद से हमारे बीच में पहुंचे हैं और आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आइए और आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभी संत हमारे बीच जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मंच पर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए, क्योंकि अनुभव की लेन देन है। तो हमारे संत पहुंच रहे हैं मंच के साथ। स्वामी राम गोस्वामी महाराज जी सहारनपुर से हमारे बीच में हैं, आप आइए। और अब हम सब, हमारा संतों से मंच सज गया है और हम 2 मिनट के लिए उस प्रभु स्मृति में बैठेंगे, परमात्मा की याद में 2 मिनट के लिए हम सभी बैठते हैं।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था, संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
अभी परमात्मा स्मृति के बाद हमारे मंच पर हमारे संत स्वामी जी उपस्थित हैं, और मैं अनुरोध करूंगी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि हमारे मंचासीन संतों का स्वागत करें, पुष्प गुच्छ से एवं बैज के तिलक के द्वारा हम सभी संतों का स्वागत करेंगी। हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहन है, और हम सभी अनुभव करेंगे क्योंकि आज अनुभव सत्र है। अनुभव के साथ साथ हम स्वागत सत्र में हम सभी करतल ध्वनि का साथ देते रहेंगे, क्योंकि हमारे संतों का स्वागत हो रहा है पटके के द्वारा, तिलक के द्वारा और पुष्प के द्वारा। ये स्वागत ऐसा है, हम सभी तिलक लगाते ही हैं, और आज हमारे पिता परमात्मा ने ये कहा कि तीन तिलक, तीन बिंदु याद रखना, एक आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। ये तीन बिंदु हमेशा लगा के रखना तो हमारी स्थिति हमेशा अचल डोल रह सकती है। तो आप सबके आगे बिंदु तिलक लगाया बहनों ने। हमारे बीच में एक संत विजयपाल शास्त्री जी महाराज जो अलीगढ़ से हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम हमसे भी अनुरोध करते हैं आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अनुभव की श्रृंखला में हम सबने अनुभव तो सबने किए हैं, सबका अनुभव है, और कुछ अनुभव हम यहाँ पर सुनेंगे अपने संत महात्माओं के द्वारा। और एक ऐसी चीज है जो सब कुछ भूल सकता है पर अनुभव जीवन में नहीं भूलता है, और अनुभव ही परमात्म प्रेम है, वो अनुभव ही भगवान की याद है, वो अनुभव ही उसमें खो जाना है। और ये अनुभव जो यहाँ पर हम सब ने किया, और हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा हमेशा संत महात्माओं को देखकर बहुत खुश होते थे और कहते थे कि आज हमारा भारत थमा है तो इन संतों के दम पर थमा है, इनकी पवित्रता के दम पर थमा है, ये तो पता नहीं भारत का क्या हाल होता। तो आज ऐसे हम महानुभावों के अनुभव सुनेंगे और अपने जीवन अनुभव करेंगे, और जब समाज में हम निकलेंगे तो इन अनुभवों को शेयर करके सबके साथ हम सबको भी इस अनुभव का लाभान्वित करेंगे और उनको भी यहाँ आने का उत्साह वर्धन करेंगे। तो अभी मैं माननीय अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं, और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ महामंडलेश्वर सुरेंद्र शर्मा जी महाराज जो बुलंदशहर से हमारे बीच में है, नहीं है, है। और आपने क्या तीन दिन में अनुभव किया यहाँ से, और वो अनुभव आपके जीवन का अंग बन जाए, और अपना टाइम सबको 5 से 7 मिनट तक दिया जा रहा है, अपना अनुभव शॉर्ट एंड स्वीट में शेयर करेंगे अनुभव स्वामी जी।
ओम शांति। श्रद्धेय मंच और मेरे सम्मुख बैठे सनातन प्रेमी बंधुगण, ये मेरा 9वां सम्मेलन है ब्रह्मा कुमारी में। बस यही मुझे लाइन याद आती है कि कोई तो बात है इनमें जो आना छुटता नहीं हमारा। समय 5 मिनट का दिया है, प्रयास करूंगा उससे पहले ही अपनी बात समाप्त कर सकूं, क्योंकि माइक को मैं ज्यादा देर पकड़ के रह नहीं सकता। पॉइंट इसलिए नोट कर लिए ताकि कुछ छूटे ना। अभी हम पढ़ रहे थे, 2-3 दिन से सुन रहे थे, ये स्वचिंतन, निज चिंतन, स्व परिवर्तन, निज परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, इनके द्वारा इसके लिए एक सूत्र याद आता है, विश्व को तो हम क्या जाने, हम तो अपने आप को जान सकते हैं कि कौन क्या कहता है इस पर मत जाओ, हमें क्या कहना है ये सोचो, कौन क्या करता है इस पर मत जाओ, हमें क्या करना है ये सोचो, तभी हम अपना स्वपरिवर्तन निज परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी बात आई थी प्रेम की और शांति की, प्रेम और शांति की। ये मेरा विचार थोड़ा दूसरा है कि और उसी के विपरीत है अशांति और क्रोध। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि शुरू की कक्षा से लेकर एमएससी तक भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में एक पाठ पढ़ाया जाता है बड़ी ही मेहनत के साथ, हीट एंड लाइट, ताप और प्रकाश। ना तो मैंने कहीं पढ़ा ना मैंने कहीं सुना कि कहीं भी लेसन कोल्ड एंड डार्क के नाम से हो। हीट एंड लाइट तो है, कोल्ड एंड डार्क कहीं नहीं है, क्योंकि कोल्ड एंड डार्क होता ही नहीं, अशुभता होती नहीं, दुख होता नहीं, नकारात्मकता कुछ होती नहीं। अब इसको ऐसे समझेंगे, यदि हम जो है -140, 200 या -400 डिग्री भी लेते हैं तो वो भी नाप ये शीतमान नहीं होती, तापमान होती है, टेम्परेचर होता है। यानी माइनस में भी हम ताप ही देखते हैं, टेम्परेचर ही देखते हैं। तो इसलिए हीट का प्रेजेंस है, कोल्ड का नहीं है, और इसी तरह लाइट की प्रेजेंस है, डार्क की नहीं है। यदि हम हीट को कम कर देंगे तो कोल्डनेस अपना आप आ जाएगी, लाइट को कम कर देंगे डार्कनेस अपना आप आ जाएगी। इसी तरह यदि हम क्रोध को कम कर देंगे तो प्रेम अपना आप आ जाएगा, और शांति को कम कर देंगे तो शांति अपना आप आ जाएगी। पहले भी जब ये देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ तो उन्होंने शांति स्थापित नहीं की, बल्कि दुर्गा चामुंडा आदियों ने हथियार उठा करके अशांति को समाप्त किया, तब जाकर के शांति स्थापित हुई। तो हमारा विचार यह है कि और ये हम जो इस तरह से अपने क्रोध को कम कर सकते हैं, उसका एक तरीका है क्रोध को कम करने का या किसी से द्वेष को कम करने का। मुझे 5 अल्फाबेट याद हैं, LEAVE, उसका अनुभव मैंने कल भी किया था 8 बजे। कभी भी आपका विपरीत विचार आते हैं, क्रोध आता है, कुछ आता है, तो उस स्थान को छोड़ते ही इन 5 अल्फाबेट्स को 5 बार दोहरा लीजिए, लीव दैट, हमेशा के लिए वो विचार दिमाग से निकल जाएंगे, फिर आपको पुनः परेशान नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, आत्मबल, मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल आदि आदि, ये कैसे बढ़े। उपाय बहुत सारे आए, लेकिन मैं अपने 38 वर्षीय ज्योतिषीय जीवन के आधार पर बता सकता हूं कि आज जिनमें भी इस चीज की कमी है, तो गोद के बच्चे के समान अपनी मुट्ठियों को अंगूठा अंदर करके ऐसे दाबने का प्रयास कर लें। 1 महीने के अंदर आशातीत सफलता मिलेगी, अगर ना मिले तो अगली बार मिलने पर पूरे पैसे वापस। धन्यवाद। ओम शांति।
स्वामी जी का ये बहुत अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छी तरह हमको टिप्स देकर गए और अपना अनुभव शेयर किया। और अगले मैं आमंत्रित करती हूँ मानस उपासक श्री राम कृपाल दास जी वृंदावन से जो हमारे बीच आए हैं, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और आप इन 3 दिनों का अनुभव हम सबके सामने शेयर करें। स्वामी जी
वंदे महापुरुष ते चरण अरविंदम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनुभव की बात निवेदन करना है कि अपना आपने अनुभव क्या किया। देखिए सबका अपना अपना अनुभव होता है, सबकी अपनी अपनी शैली होती है, सबके अपने अपने शब्द होते हैं, सबकी अपनी अपनी उपासना अलग अलग होती है। तो इसमें न कोई छोटा न कोई बड़ा। अपने राम जी ने जैसा अनुभव किया, अपने थोड़े से साधना काल में क्योंकि वैसे तो आयु की गणना हम नहीं करते हैं, लेकिन साधना कभी कभी होती है, हमेशा हम उसमें स्थिर नहीं रह पाते हैं। एक बार हमारे जीवन में ऐसा संयोग बना कि जिसके कारण अपने राम जी को वृंदावन छोड़ करके और महाराष्ट्र जाना पड़ा, और महाराष्ट्र में भी संत श्री एकनाथ जी महाराज के भजन स्थली जन्मस्थली पैठण धाम में, और वहां पर जो हमने अपने लक्ष्य को रखा था कि हमको ये करना है, तो हमने अपनी गुरु परंपरा के अनुसार जिस परंपरा से हम हैं उसके अनुसार ही हमने अपनी साधना को शुरू किया। तो अब सबसे पहले जो है ये जो पीछे लिखा हुआ है, अध्यात्म के द्वारा मानव जीवन का उत्थान कैसे हो, इसमें हमने सबसे पहला जो सूत्र है वो चुना अपने जीवन के लिए, अपने लिए, क्या हमारा उत्थान कैसे होगा। हम जिस लक्ष्य को लेकर के यहाँ आए हैं तो वो लक्ष्य हमको कैसे प्राप्त होगा। तो जो सबसे पहला सूत्र है वो हमने, क्योंकि हम नाम ही लिखा है मानस उपासक राम कृपाल दास लिखा है, लेकिन राम कल्याण दास नाम है हमारा जी, नाम है राम कल्याण दास। तो मानस की हमारी उपासना है, मानस यानी श्री रामचरितमानस। हमने सबसे पहला सूत्र बनाया कि हम इस सूत्र को यदि जीवन में उतारते हैं तो आगे बढ़ेंगे, और वो सबसे पहला सूत्र है हमारे जीवन का, अपने साधना काल का, वो है भगवान श्री राम जी ने जो नवदा भक्ति का उपदेश किया है उसमें आठवीं भक्ति की जो चौपाई है और उसमें भी जो अर्धाली है, आठव जथा लाभ संतोषा, इसके बाद वाली जो लाइन है उसको हमने अपने जीवन का आधार बनाया, सब शुरुआत यहां से किया। सपने ही नहीं देखें पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना, ये हमने अपने मन में धारणा बनाई कि हमारे दोष कोई भी देखे हमें उसकी परवाह नहीं करना है, लेकिन हमें किसी के दोषों के ऊपर अपने मन को केंद्रित नहीं करना है। यहां से अपने राम जी ने शुरुआत किया, और फिर धीरे धीरे जब इस में स्थित हुए तो ये आया कि अब, क्योंकि सूत्र तो बहुत सारे हैं और समय के अनुसार सारे सूत्रों को हम निवेदन कर भी नहीं सकते हैं, इसमें दूसरा सूत्र आए कि पर निंदा सम अग्निगरीसा, हमें किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी है, हमारी निंदा कोई करे हमें इसकी परवाह नहीं है, सामने वाला कितना भी हमसे शत्रुता करे लेकिन हमें उससे शत्रुता नहीं करनी है। हमने ये हमारे निजी विचार हैं, हम आपके ऊपर किसी के ऊपर ये दबाव नहीं बना रहे हैं, ये हमारे निजी विचार हैं और हमने ऐसा किया, और इन सबको करने में सबसे जो मुख्य बात है वो निकल करके ये आती है कि अपने आप को मिटा देना। ये तब होगा जब हम अपने आप को मिटा देंगे, हम अपने आप की बलि चढ़ा देंगे, संसार की जितनी दुख है उस सारी दुखों को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम इन सूत्रों को जीवन में उतार पाएंगे और तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और अपने आप को मिटाने का तात्पर्य कि मैं कुछ नहीं हूं, ना मेरे अंदर कोई योग्यता है। जैसे कल 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो प्रवचन हुआ, एक एक शब्द को हमने सुना और बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसा हमने किया, जीवन में उतारा है। जो जो आपने बोला है सूरज भाई जी ने, एकदम 101% सब सत्य। मन की बात आती है, हमारा मन शुद्ध कैसे होगा, तो बात वही आ गई, सपने ही नहीं देखे परदोषा। हमारा जो मन है वो दोष युक्त तब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में जब हम दोष देखते हैं और उन दोषों का चिंतन करते हैं, तो हमारा जो मन है वो मलिन होता है। और फिर उस मलिन मन के द्वारा कुछ नहीं देखा जा सकता है। हमारे मानस के अनुसार निर्मल मन जनसो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। तो जो हमारा मन है वो निर्मल कैसे होगा और इसमें दोष कहाँ कहाँ से आते हैं? हमारे नेत्रों के माध्यम से दोष आते हैं, हमारे कानों के माध्यम से दोष आते हैं, हमारी वाणी के माध्यम से दोष आते हैं, हमारे जो है रसना के माध्यम से दोष आते हैं। ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 जो विषय हैं, ये इन द्वारों के द्वारा हमारा मन जो है वो मलिन होता है, दोष आते हैं, हम उनका चिंतन करते हैं तो जैसे चिंतन करेंगे वैसे हमारी वृत्ति बन जाती है और हम वैसे वैसे बनते चले जाते हैं। तो अब ये जो बात है तो बहुत बड़ी, और इसको करने के लिए बस अपने आप को मिटाना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं। जब हम अपनी किसी भी प्रकार की योग्यता का अभिमान जब हम नहीं रखते हैं, तब जाकर के हम इसमें सफल हो पाते हो। और जहां जरा सा अहम रहा किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, जब चावल को सिद्ध किया जाता है और माताएं उसको एक दाना निकाल के देखती है, तो ठीक है, यदि उसमें जरा सी कनी नहीं है, कठोरता नहीं है, तो मान लिया जाता है कि ये सिद्ध हो गया है, ये खाने योग्य हो गया है, धारण करने योग्य हो गया है। यदि उसमें जरा सी कठोरता है तो अभी कहा कि नहीं, और इसको 5 मिनट और अग्नि पे इसको रहने दिया जाए। और जब देख लिया कि अब ये बिल्कुल पूरी तरह से इसकी कठोरता समाप्त हो गई है, तब वह फिर अपने पाने योग्य होता है, भगवान को भोग लगाने योग्य होता है। मतलब उसमें कठोरता नाम की वस्तु नहीं रही, वो एकदम निर्मल हो गया, विनम्र हो गया, तो फिर वो हमारे लायक होता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जब किसी भी प्रकार की योग्यता का जब अहम नहीं रहेगा और अभिमान शून्य हो जाते हैं, और पूरी तरह से जब हम उस परमात्मा को, उसके अनेक नाम है, उसका कोई एक नाम नहीं, उसके अनेक नाम है और अनेक ही उसके रूप है, लेकिन है एक वही है, वो एक ही, लेकिन उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसके उपासना की पद्धति अलग अलग हो सकती है, सब कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन है तो एक ही वो। तो उसके लायक और उसके भोग्य हम तभी बनते हैं, और जिसको हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर के जो पाया कि यहाँ समर्पण हुआ जाता है, समर्पित हुआ जाता है। समर्पित का मतलब यही है कि हम भगवान के योग्य हो जाएं। वो भगवान के योग्य हम तब ही होते हैं कि जब हम उनके योग होने का मतलब उनके सुख में सुखी होना, हमें अपने सुख का त्याग करना है, हमें अपने सुख का त्याग करना है। यदि हमने अपना जरा सा सुख चाहा, चाहे वो कायिक वाचिक मानसिक किसी भी प्रकार का सुख हो, किसी भी प्रकार के सुख की यदि चाहना हमारे मन में है, तो अभी हम पूरी तरह से समर्पित नहीं हुए। समर्पित होने का, शरणागत होने का, उनके योग होने का एक ही तात्पर्य है कि उन्हें कैसे सुख मिले, और हम चाहते क्या है कि हमें सुख मिले, प्रभु हमारा दुख दूर कर दीजिए, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। इसका मतलब कि हमने उनसे कुछ चाहा, तो ये हमारी शरणागति नहीं होगी। हमारी शरणागति हम उनके योग तभी माना जाएगा कि हमें उनसे कुछ चाहना नहीं है, बस हमें तो चाहना यह है कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो राम जी हैं, हमारे जो परमात्मा है, हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे उनको कुछ भी कह दो, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, गोविंद, गोपाल, माधव, मदन, मुरारी, कुछ भी कहो, आपकी जो इच्छा सो कहो, अल्लाह कहो, कोई बात नहीं, जो भी मन में इच्छा जो सो कह सकते हो आप, वो सबके अंदर वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो देखिए, जो कल जो एक बहुत जोर जोर दे दे करके सूरज भाई जी कह रहे थे, वो बात यही है कि आपने कहा बार बार कि मैं एक शक्तिवान का शक्तिमान, मैं एक बालक हूं, हमारे शब्द दूसरे हैं, आपके शब्द दूसरे थे बाकी, लेकिन भाव वही है ना। तो अब वैसे तो हमारा समय पूरा हो गया है, बहन जी खड़ी हुई है, हमको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है विषय, और इसका अनुभव देखिए, हम आपसे निवेदन करें, इतने बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम एक निवेदन यही कर सकते हैं कि जिस दिन हमारे अंदर समता आ जाएगी, देखिए समता समता आत्मा से होती है, व्यवहार से नहीं हो सकती है। समता आत्मा से होती है, व्यवहार में समता नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकती है व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार तो व्यवहार है, उसमें तो हमको व्यवहार की तरह से ही चलना पड़ेगा, लेकिन समता होती है आत्मा से। तो आत्मा जितनी भी है, हम चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जलचर थलचर नभचर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना, जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब एक ही है, और वो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और देखिए, हमको कहा कि हम अविनाशी है, तो क्यों अविनाशी है, क्योंकि हम उस वो अविनाशी है, अविनाशी का हम अंश है, इसलिए हम भी अविनाशी हैं, हमका मतलब आत्मा से। तो हमारा स्वरूप है अविनाशी, और हम चेतन है, जड़ नहीं है, हम अमल है, अमल का मतलब हम विकारों से रहित है, किसी प्रकार का मल नहीं है, और हमारा जो स्वरूप है वो है सहज सुख राशि, हम सहज में ही सुख की राशि है, दुख का तो नाम ही हमारे अंदर नहीं, मतलब ये हमारा सबका स्वरूप है आत्मा का। तो जब हम अपनी जैसी आत्मा हम सबके अंदर देखने लगेंगे, सबको ऐसा समझने लगेंगे कि मुझे कष्ट मिल जाए लेकिन मेरे सामने वाले को कष्ट ना मिले, और ये भावना जब हमारे सबके अंदर चराचर जीवों को सुख पहुंचाने की भावना जब हमारे अंदर आ जाएगी, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम ये होगा। दास ने इस बात का अनुभव किया थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर बाद में तो फिर हम भी माया में लिप्त हो गए हैं, लेकिन जो समय, जो साधना का समय था उसकी बात बता रहे, 2-3 महीने में वो अनुभव करवाया ठाकुर जी ने, कि जो हमने 35 साल में नहीं किया वो मात्र 2 महीने में अनुभव हुआ था, है ना। तो यहाँ की अनुभूति का तो हमने इतना किया है कि यहाँ की अनुभूति का तो ये किया है कि यहाँ जो है जीव सेवा, यहाँ जो अन्य सेवा, जो भंडारा चल रहा है, ये एक अद्वितीय है, और परमात्मा की सेवा है अन्य सेवा के माध्यम से, ये बहुत विशेष बात है। और दूसरी बात एक ही बहुत अच्छी लगी यहाँ का अनुभव में, कि जो हर एक घंटे में जो कोई परमात्मा का भजन बजता है, और उस समय हमको लाने वाले वो बैठे हैं अवध बिहारी जी भाई, जी महाराज, जी महाराज जी, दंडवत प्रणाम, आप सीख क्या,
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। समय की सीमा है और 11 बजे यहाँ समापन सत्र शुरू हो जाएगा, इसलिए हम सभी महानुभाव से निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर आप सब अनुभव बहुत अनुभवी बहुत हैं, पर यहाँ पर जो 3 दिन में अनुभव किया उसको यहाँ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसलिए अभी आपने निर्दोष की बात कही तो भगवान हमें कहता है बच्चे सबकी विशेषताएं देखने लग जाओ, दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छाइयां देखेंगे तो दोष देखने की या दोष की बात ही नहीं रहेगी, गुण देखने हैं। तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज, पीठाधीश्वर पीताम्बरा विद्यापीठ मोदी नगर से हमारे बीच में है। अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपना अनुभव हम सबके सामने शेयर करेंगे स्वामी जी।
आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित संतवृंद, मेरे ब्रह्मा कुमार भाइयों और बहनों, ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय ये जो 3 दिवसीय सत्र रखा गया, मेरा आगमन यहाँ पहली बार हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा गुरुकुलीय परंपरा से हुई। उन परंपराओं को मैंने यहाँ पुनर्जागृत होते हुए देखा। प्रातःकाल 3:30 बजे गुरुकुल में मंत्र गुंजायमान होते थे, प्रात रग्निम प्रात मित्रम हवामहे, यहां भजन प्रारंभ होता है। और जब सुबह वो भजन बज रहा था तो वो 2 लाइनें एक स्टेंजा करके वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा फिर गाने को मन हुआ तो मैंने YouTube पर उसे सर्च किया और मैंने फिर पूरा सुना, बड़ा अद्भुत। देखिए, शब्द ही ब्रह्म कहे गए हैं और यदि सृष्टि के आरंभ में हम नाद की व्याख्या करते हैं तो ब्रह्म नाद से मंत्रों का समुच्चय प्रारंभ हुआ। हम 3 दिन से यहां मन, आत्मा, शरीर, लोक और परलोक, इन पर चर्चा कर रहे हैं और बड़ी गहन व्याख्याएं सुन रहे हैं, बड़े विशद प्रमाणों के साथ विचार सुन रहे हैं जिनका मन पर असर तो होता ही है, लेकिन वे लोक परलोक के हमारे जन्म जन्मांतरों के उन अवसरों में एक अवसर हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हां हमने ये समय बहुत अच्छे से जिया। वस्तुतः हम यहां मन के कारण ही बार बार जन्म लेकर आते हैं। आत्मा को क्या जरूरत पड़ी है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के इर्द गिर्द अपना खेल रहे हैं, आनंद हो रहा है, क्या जरूरत पड़ी है बार बार पृथ्वी लोक पर आए और विभिन्न योनियों में जन्म लें और फिर उसके पास जाने के लिए प्रार्थना करें। तो वो पता लग रहा है कि हमारा जन्म मन के कारण हुआ है, क्योंकि मन के द्वारा इच्छित प्रकृति के द्वारा खेले गए खेलों के कारण हम यहां हमारा जन्म हुआ और हमें अपने मन के इच्छित भोग भोगने पड़े और उसके बाद मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, जल का भाग जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गया और वायुमंडल के माध्यम से आत्मा पुनः परमात्मा को प्राप्त हो गई। यहां रात्रि काल में जब हम सो रहे थे तो एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में हमने देखा कि आकाश मार्ग से, कल अब ये भ्रम भी हो सकता है क्योंकि कल मां सरस्वती की बातें हो रही थी, तो हमने देखा एक श्वेत कमल से मां सरस्वती आकाश मार्ग से यहां इस पर्वत श्रृंखला पर उतर रही हैं और यह सारा पर्वत एक बिल्कुल रजत मंडल की तरह प्रकाशित हो गया है और हम सभी हमारे शरीर के रोम छिद्रों से भी उसी प्रकार का यहां से एक प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। हम सब एक दूसरे से खींचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ सभागार में बैठे हैं तो ऐसे सब उस श्वेत मंडल से खींचे जा रहे हैं और एक रूप हो रहे हैं। वह अद्भुत दृश्य देखने के बाद पता नहीं कैसे हमारी आंख खुली और आंख खुलने के बाद हमने देखा कि कमरे में भी हमें कुछ क्षण वैसा ही प्रकाश दिखाई दिया जबकि लाइटें बंद थीं और केवल एक जो ये ध्यान चिन्ह जो लगा हुआ है कमरे में वो जला हुआ था, लाल रोशनी उसमें से निकल रही थी और उसके केंद्र बिंदु से एक गोल्डन लाइट रन कर रही थी। तो बड़ा अद्भुत दृश्य था और इस स्थान पर मैं बार बार आऊं ऐसी मेरी इच्छा है और यहाँ आना हम समझते हैं कि किसी न किसी जन्म के पुण्यों का प्रताप है तो यहाँ आना होता है। जैसे भगवान बद्रीनाथ जी के स्थान पर एक बोर्ड लगा है कि यहाँ कोई अपनी इच्छा से नहीं आ सकता, जिसे बाबा बुलाएंगे वही आएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं 60 के दशक की आयु पूर्ण करने की स्थिति में यहाँ पहुंचा हूँ तो बाबा की इच्छा रही तो पहुंचा हूँ। और बड़ा अद्भुत यहाँ भाव है और एक अंतर चेतना की जागृति हुई है। सबसे अच्छा तो ये हुआ है कि जो 3:30 बजे जगने का अभ्यास बंद हो गया था वो स्वतः आँख खुलने वाला हो गया है। तो जो जितनी जल्दी जागेगा उतना जल्दी उसकी चेतना जागृत होगी, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न अनुभव कर रहा हूँ, बड़ा सुख अनुभव कर रहा हूँ और प्रतीत होता है कि मैं किसी दूसरे संसार में हूँ।
स्वामी जी का जो आपने अपना अनुभव शेयर किया और आपको माँ सरस्वती का दर्शन हुआ, और मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करती हूँ कि अपने समय को 3-4 मिनट में पूरा करें क्योंकि समय कम है, और अपना जो आपने यहाँ अनुभव किया, क्या किया क्या नहीं किया वो अनुभव शेयर करें। बाकी तो आप अनुभव बहुत है, हम बहुत सारा बोल सकते हैं, अभी समय की सीमा है उसको हम ध्यान में रखेंगे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ स्वामी राम गोस्वामी महाराज जी जो सहारनपुर से हमारे बीच में आए हैं, आप अपना यहाँ का अनुभव हम सबके बीच रखेंगे। स्वामी
अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा का स्मरण करते हुए सभी वरिष्ठ मंचासीन साथियों और मेरे बाकी साथियों को प्रणाम करते हुए मैं संक्षिप्त में ही अपना अनुभव शेयर करूंगा। कल की बात बहुत हो चुकी है, अध्यात्म के द्वारा मानव जीवन का उत्थान, उसके विषय में मैं एक ही लाइन कहूंगा, वह यह होगी क्या अध्यात्म के बिना मानव जीवन का उत्थान भी हो सकता है? इस पे भी थोड़ा चिंतन करें तो उत्तर मिल जाएगा। क्या द्वारा मानव के जीवन का सही उत्थान हो सकता है? तो हमें उसका उत्तर मिल जाता है और हमारे वरिष्ठ साथियों ने बहुत विस्तृत से इस पर कल चर्चा की। आज मुझे जो आदेश हुआ है, मेरा अनुभव कैसा रहा और मेरी लागणी कैसी रही या मेरा जो इसके विषय कैसा लगा, इसके विषय में मैं बहुत निशब्द हूं। कारण यह है कि जब भी हम विवरण की बात करते हैं कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में क्या है, तो हम कितने एकड़ में हैं, कितने ये हैं, आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जब किसी से प्रेम करते हैं, जब किसी से लागणी होती है, किसी से स्नेह होता है, तो वहां शब्दों की बहुत कमी पड़ जाती है। चाहे कितना भी बड़ा शब्दकोश हो, एक भाषा का नहीं किसी भी भाषा का शब्दकोश हो, अपूर्ण हो जाता है। अभी तक हम ये व्याख्या नहीं कर सके कि माँ और बेटे में प्यार है तो वो आई लव यू कह सकती है क्या, या स्त्री में पुरुष में। हमें एक शब्द के लिए अभी भी ऐसे ढूंढते, कोई नया शब्द मिले अपने स्नेही को हम व्यक्त करने के लिए, वैसी स्थिति आज मेरी है। मैं एक छोटे उदाहरण में इस बात का अनुभव आपको शेयर करूंगा। उदाहरण के लिए मेरे पास 5 तरह के आम हैं। हापुस, मुंबई का हूं इसलिए मैं हापुस को पहले बोलूंगा, दशहरी, रत्नागिरी, तोतापुरी वगैरह वगैरह। मैंने हमारे सब अधिकांश हमारे बीच में महामंडलेश्वर हमारे वरिष्ठ हैं, जिनका ज्ञान शब्द का ज्ञान अपार है। कोई उसके लिए मुझे टिप्पणी नहीं करनी है, मैं सबको एक एक अलग अलग एक आम देता हूं और वो उसे खाइए। अब मैं आपके खाने के बाद में पूर्ण करने के बाद में आपसे पूछूं, इसे लिखिए, इसका स्वाद कैसा है? ये आम का स्वाद दशहरी का कैसा है, तोतापुरी का कैसा है, और कैसा है केसरिया का, दशहरी का? तो आप, मेरा दावा है, जो भी आप लिख के लाएंगे उसमें सुंदर, अति सुंदर, स्वादिष्ट, रुचिकर, शहद के समान मीठा, इस तरह के एक दो शब्द आपके पास शब्दकोश बढ़ा है तो आप बढ़ाएंगे, लेकिन उससे वो व्याख्या नहीं हो सकती कि ये रत्नागिरी का है, तोतापुरी है, दशहरा है या हप्स है। लेकिन इसके विपरीत, अगर एक सूरदास हमारे मित्र हैं, अंधजन हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप उसके हाथ में एक आम दे दीजिए, सूंघ के बता देगा भैया ये तो दशहरी है। इतना आसान है उसके लिए। और हमारे लिए इतना बड़ा शब्दकोश होने के बाद भी उन आम के टेस्ट का हम उसकी क्या उसका टेस्ट है, कैसा स्वाद में, वो नहीं लिख सकते। अगर आप दावा करते हैं कि आप लिख सकते हैं तो उस पत्र को मैं इंग्लैंड में भेजूं या कहीं दूसरी जगह भेजूं, वो पत्र पढ़ के बता दे कि ये किस आम की व्याख्या है। तो हम विवरणात्मक बहुत कह सकते हैं, ये पीला है, लाला है, ये इतना बड़ा हमारा मंडल है, इतने लोग रहते हैं, लेकिन जब स्नेह की बात आ रही है, मेरे पास निःशब्द हूं, फिर भी मुझे कुछ कहना है, तो मैं अपनी बात सिर्फ दो शब्दों में कहूंगा। अब ऐसा है कि इतना ज्ञानी तो मैं नहीं हूं, आप लोग वरिष्ठ हैं, साथ में आसमान की बात करूं, मैं तो इस जीवन की बात करता हूं। आप अगर ब्रह्म कुमारी आश्रम में जो सिखाया जाता है, मैंने अनुभव किया है, मैं परम पिता परमात्मा के पास जाऊं या नहीं जाऊं, या आगे की यात्रा अपनी विधि से करूं या आपकी विधि से करूं, इतना मैं निश्चित कह सकता हूं, इस जीवन में आपके मृत्यु तक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और बहुत ही एक आदर्श जीवन आप जी सकते हैं। बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, व्यसनों से मुक्त रह सकते हैं, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और प्यारा स्नेहिल एक मुझे अनुभव यहां लगा। थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। आपने एक टेस्ट के माध्यम से अपना अनुभव व्यक्त किया और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ स्वामी महेंद्र जी महाराज, जो कटनी से हमारे बीच पहुंचे हैं, वो अपना चंद शब्दों में ही जल्दी अपने सूक्ष्म रूप में अपने अनुभव को शेयर करेंगे। केवल यहाँ का अनुभव ही शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा।
ओम शांति। आदरणीय समस्त संतजनों को विनती करते हुए अपने कुछ शब्द रख रहा हूं। पहले तो ये बताऊं कि जो कटनी से कहा गया है वो मैं सागर जिला का हूं, ग्राम मगरोन, ग्राम देहाती हूं, बिल्कुल छोटी सी बुद्धि आम सरस्वती अति लघु, फिर भी सौभाग्य है ये सौभाग्य, इस बड़े बड़े वक्ताओं का तो भाग्य है, पर हमारी सौभाग्य है कि हमें आप मंच पर बुलाया गया। तो मन पर बात चल रही है, विषय अध्यात्म का है। सत रज तम चित बुद्धि अहम शब्द आचरस रूप, रसन गंध मिल गांठ परी तब उपजो मन भूप। इस शरीर का राजा है मन, वो उत्पन्न हुआ है, अब वो छलांग मारता है। मन मतंग है, मन तरंगे भरता है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये मन की है, जो मन है इसके हमने तत्व बोले हैं। तो अनुभव पूछा गया है, हम तो वक्ता नहीं बन के, अनुभव के आप यहां आए तो आपको कैसा लगा? तो संक्षिप्त में बोलूं कि जैसे सुदामा जी जब वृंदावन पहुंचे थे, द्वारका जी पहुंचे थे, तो तो राम जी ने कन्हैया ने उनकी कितनी सेवा करी, उनको कितना कितना सुख मिला, बस यही मैं कह सकता हूँ छोटे समय में कि बैसाही में छोटा छोटा सा ब्राह्मण शरीर है ये, और इतने भव्य स्वागत में हमें पहली बार ये दर्शन मिल रहा है, और इतना कहकर ही मैं अभी सब दीदी को खड़ा ना होना पड़े, मेरी इच्छा थी इनके खड़े होने पर तो अपनी बेइज्जती है।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का, जो आपने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा अनुभव हम सबके साथ शेयर किया कि कृष्ण जैसा अनुभव हमको हुआ, ऐसा कहीं नहीं अनुभव हुआ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ स्वामी दिव्य आत्मानंद जी महाराज, जो फरीदाबाद से हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो भी अपना अनुभव हमारे बीच में 3 दिनों का शेयर करेंगे। स्वामी जी
बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 3 दिन से आप सब लोग सबको सुन रहे हो और समझ भी रहे हो, लेकिन आज अनुभव का विषय है। हमें 3 दिन से बोल रहे थे कि आपने बोलना है बोलना है, हमने कहा नहीं, हमने सिर्फ सुनना है संतों को। आज जब बोला गया कि अनुभव है, तो हमने खुद कहा कि आज हम बोलेंगे, क्योंकि अनुभव ऐसी चीज है कि जो कथा कहानियां तो सब सुनते हैं, जो प्रैक्टिकली होता है उसमें बड़ा आनंद आता है। कल भी उषा दीदी कह रही थी कि कण कण में भगवान है, लेकिन क्या हम मानते हैं? लेकिन हमने ये अनुभव किया कि यहाँ के कण कण में परम शांति है। और कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं देख सकता, वो निराकार है। ग्रंथों में भी कहा है कि आत्मा को कोई नहीं देख सकता, लेकिन जब हम सुबह मेडिटेशन हॉल में जाते हैं तो एक साथ कई आत्माओं को परमात्मा के साथ बैठे हुए देखते हैं, ये हमने अनुभव किया। तो कण कण में अनुभव ही अनुभव है, जितना कहें उतना ही थोड़ा है, और समय भी थोड़ा है, इसलिए ज्यादा कह भी नहीं सकते। और सबके साथ ही अनुभव हुआ है और हो भी रहा है। कल रात को हमारे पास किसी महाराज जी का फोन आया, 2 दिन से हमारी बात नहीं हो पा रही थी। अब उनको लगा कि पता नहीं कहाँ है कि बात नहीं हो पा रही। रात्रि में फोन आया, हमने कहा चलो अब फ्री हैं तो बात कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने फोन करा, हमने बोला ओम शांति। अब वो घबरा गए कि भाई आप कहाँ हो, 2 दिन से बात होनी और एकदम कह रहे ओम शांति, और आपको पता है कि ओम शांति शब्द हमारे में कब यूज किया जाता है? तो हम लोग तो बोलते हैं, कोई बात होती है तो जय सच्चिदानंद, हर कोई बोलता है, कोई राधा कृष्ण कोई राम कृष्ण बोलता है। तो हमने बोला सब कुछ ठीक ठाक है, हम शांति में 2 दिन बाद बात करेंगे। तो उसने भी बोला ठीक है महाराज जी ओम शांति। तो ये अनुभव अपनी आप ही निकलता है। कण कण में हमारे रोम रोम में इतने सारे संत महात्मा मिलते हैं, कोई क्या बोलता होगा अपने संप्रदाय में कोई क्या, लेकिन जब हम डाइनिंग रूम में मिलते हैं तो सब एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं, सब एक हो जाते हैं। और जब संतों का यहाँ मिलन होता है, वो सबसे अच्छा अनुभव होता है कि इस ज्ञान सरोवर में जब संत आते हैं, हम मिलते हैं, तो ये प्रयाग सरोवर बन जाता है। और यहाँ पर जो भी बगला रूपी हम जैसे संत या कोई भी संसारिक रूपी आता है तो वो हंस बनकर जाता है, ये मेरा बिल्कुल अनुभव है। क्योंकि मैं 4-5 साल से जुड़ा हूं, ORC के भी काफी प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हुए हैं, और प्रीति दीदी मुझे बुलाती हैं फरीदाबाद से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बाबा से मिलवाया, बाबा की राह दिखाई। और सबका बहन भाइयों का बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना स्नेह और प्रेम दिया कि जो हम लोग संसार में रहकर नहीं प्राप्त कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और बाबा का कल आप सुन रहे थे कि सब दीदियां कह रही थी बहने कि आपका अपना घर है, आपने आना है, और ये सच में हमारा अपना घर है। और मैं तो इंतजार करता हूं कब निमंत्रण आए बीके कुमारियों का और मैं अपने घर में जाऊं। तो इसी के साथ ही सबको ओम शांति।
बहुत सुंदर, हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया, और हमने देखा कि 3-4 मिनट के अंदर सबके चेहरे खिल उठे। ऐसा अच्छा अनुभव आपने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल बाबा का सानिध्य अनुभव किया, और प्रैक्टिकल आपने अनुभव औरों के साथ भी ओम शांति का शेयर कि कैसे अपनेपन का अनुभव होता है। तो अभी मैं आगे आमंत्रित करती हूँ विजयपाल शास्त्री जी महाराज, जो अलीगढ़ से हमारे बीच आए हैं, हम उनको अनुरोध करते कि आए और अपना अनुभव शेयर करें।
सामने बैठी सभी दिव्यात्मा तथा मंचासीन सभी दिव्यात्माओं के लिए मेरा बार बार प्रणाम हो तथा वंदन। गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन करते दान, और गुरुबिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। देखो, गुरु के बिना माला फेरना, दान करना, यज्ञ करना, पाठ करना, जाप करना सब व्यर्थ है। अगर संसार में कोई वस्तु है और संसार से तारने वाली कोई वस्तु है तो गुरु है। गुरु के द्वारा ही आत्मज्ञान होता है और गुरु ही हमको इस भवसागर से पार ले जाने वाली शक्ति है। अगर गुरु सच्चा नहीं होगा, मुझे गुरु दीक्षा सन 2006 में 6 दिसंबर को मिली थी। मैं बड़ा आभारी हूं गुरुजी का, और गुरुजी ने यहां भी मुझे चमत्कार दिखाया। मेरी टिकट, अपना अनुभव बताता हूं, गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं कि निज अनुभव में कहूं खगेसा और बिन हर भजन न जाए कलिसा। कि मेरी ट्रेन बस छूटने वाली थी, भीड़ इतनी थी, मुझ पर चढ़ा ही नहीं गया, मैं रह गया। गुरु महाराज की बड़ी कृपा, और एक श्वेत वस्त्रधारी भाई ने मुझे हाथ का इशारा दिया और हाथ पकड़ के ट्रेन में चढ़ाया इतनी भीड़ में। तो ये बड़ा कठिन हुआ और मैं निराश हो गया था, मैं वापस जाने के लिए, और मेरे एक साथी तो वापस हो गया था, उसे सीट नहीं मिली और वो लौट गया, और मैं जो है उन्होंने बुला के और चढ़ाया और सीट दी। मुझे नहीं पता ये क्या कर्षमा है, और मैं इसलिए इस ब्रह्म कुमारी बहन जी का तथा ब्रह्म कुमारी भाई जी का और बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, और लाने वाले संत कर्म किशोर जी हैं, संत कमल किशोर जी ने जो ये रास्ता दिखाया है, मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। महामंडल सुलेंद्र जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। देखो, आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसकी आंखों के पीछे बैठक है। अगर आदमी को आत्मज्ञान हो जाएगा तो इस संसार से वो विमुक्त हो जाएगा। एक दिना वन में बस के मृगराज की मां ने नहर जायो, और काहू गडरिया के हाथ पड़ो, तिस नेता भेड़ ने बीच छिपायो, भूल गयो कुल धर्म सब है, और श्यानो भयो तह दूध पिवायो, ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। वो अपने असल को भूल गया कि हमारा असल घर कहाँ है। हम पहले संसारी जीव नहीं थे, हम उस परमात्मा के अंश थे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जब से जीव भयो संसारी और छूटी न ग्रंथ न हो सुकारी, यानी पहले जीव संसारी नहीं था, वो समुद्र की बूंद था। यहाँ आने के बाद में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरा तेरा सब यही बने। अब कोई समय का सदगुरु मिल जाता है, वो हिला देता है कि सतगुरु आयो जियो जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो, और काल शिकारी जग में छायो, भागो रे मेरे प्यारे भागो। अगर समय का कोई सदगुरु मिल जाए और नाम की दीक्षा दे दे तो वो बताएगा शब्द शब्द जो है परमात्मा के लिए कहा है। शब्द इसे लोगास बोलते हैं चीनी भाई, हम गोस्वामी जी ने इसे राम नाम कहा है, सच्ची धुन कहा है, आत्मज्ञान कहा है। आत्मा और परमात्मा का भेद जानने के लिए समय के सदगुरु का होना जरूरी है, और यहाँ जो हमें आत्मज्ञान मिला है और जो सम्मान मिला है, भाइयों का प्यार मिला है, ब्रह्म कुमार बी के भाइयों का, बहनों का, हम इनके लिए बार बार आभार करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें से पैदा हुआ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का डला, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे डटा है ये ख्याल आसमा, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। होश हवास सब गए और सामान सब जा चुका, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान सब जा चुका। बोल ब्रह्म कुमार महाराज की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सभी संतों ने अपने अनुभव शेयर किए, और हम चाहते हैं कि अनुभव आप आगे भी शेयर करते रहेंगे, अपने जहां भी आप अपनी सभा में ये अनुभव शेयर करेंगे और यहाँ की बात बताएंगे, तो सबको भी आप बहुत एक मंत्र के साथ जोड़ सकेंगे, एक यूनिटी में जोड़ सकेंगे, तभी हमारा समाज स्वर्णिम संसार बन सकेगा। और आप सभी यहाँ से जब जाएंगे तो आपने यहाँ देखा ज्ञान सरोवर परिसर में कहीं भी किसी के चेहरे में उदासी निराशा नहीं है। तो आप सब भी आज से स्माइल चेहरे में रहेंगे हर समय हर हाल में, क्योंकि हम सब जब बाज की दुकान पर जाते हैं तो घड़ी की दुकान पर चाहे वो घड़ी बंद हो पर उसका समय होता है 10:10। आप ध्यान से देखिए, और वो 10:10 होता है उसका कौन सा स्टाइल होता है देखेंगे ना आप सब, ऐसे होता है। और ऐसे कैसा होता है, हमारे चेहरे पर हमेशा 10:10 रहने चाहिए, स्माइल फेस रहना चाहिए, और ये फेस कभी भी हमारा बदलना नहीं चाहिए। यदि शुभकामना आप सब लेके जाएंगे तो आपसे अपने आप सेवा हो कि आप ये कहाँ से सीख के आए हो, तो खुश रहने का बैंड, और हमेशा सोचिए मेरे लिए 10:10 ही हुए हैं। इन्हीं शुभकामना साथ हमारे सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वेलकम। और आप सबने अपने समय पर अपने कार्य को पूरा किया, और ओम शांति। ये सत्र भी बाकी भाई साहब ने बताया कि जो भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो रात्रि 8:30 रात को जिनका अनुभव रह गया जो शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, रात्रि 8:30 अनुभव की लेन देन चलेगी। और अभी हमारे संतों ने पूरा किया, अभी अगला कार्यक्रम हमारा इसी मंच पर होने जा रहा है समापन सत्र, तो 1 मिनट साइलेंस के बाद हम पूरा करते हैं। और अगला प्रोग्राम के लिए आप सब यहाँ ही बैठे रहेंगे और यहाँ ही हम आप समापन सत्र का हम सब सुनेंगे बहुत अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक से। ओम शांति।